أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. کلام جدید میں ہماری بات فصل نہم میں آج سے شروع ہوگی، جس فصل کا عنوان ہے تجربہ دینی. کلام جدید میں یہ والی بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے. سب سے پہلے یہ بات غرب میں مطرح ہوئی ہے، اور پھر غربیوں سے اس بات نے اسلام میں بھی ورود پیدا کر لیا ہے. چونکہ عرض کیا تھا، ہمارے جو متفکرین غرب کی یونیورسٹیز میں جا کر پڑھتے ہیں، تو چونکہ اپنے عقائد اسلامیہ میں زیادہ عمیق و دقیق نہیں ہوتے، بنیادیں مضبوط نہیں ہوتی، تو جب ان کے مفکرین سے ان کا واسطہ پڑھتا ہے اور ان سے درس پڑھتے ہیں، ان کے مبانی کو وہ دیکھتے ہیں، چونکہ خود کام نہیں کیا ہوتا، ان کے مبانی پر جا کے کام کرتے ہیں کیونکہ ان کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، تو ان کو وہ بات مضبوط لگتی ہے اور ان کے تحت تاثیر ہو جاتے ہیں، اس کے مبنے کے قائل ہو جاتے ہیں. پھر جب آ کر اپنے دین میں مطالعہ شروع کرتے ہیں، پھر انہی مبانی کے تحت آ کر دین کی تفسیر کرتے ہیں. یہ تجربہ دینی کی جو بحث ہے، اس یعنی یہ ہمارے اس کلام کے اندر، کلام جدید کے اندر، ہمارے دین کے اندر بہت جگہ پر استعمال ہوتی ہے. یہ مثلا ایمان کے اندر یہ بات مطرح ہوتی ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے. مثلا وہاں پر بعض بندے آ کر کہتے ہیں ایمان جو ہے یہی تجربہ دینی ہے، حقیقت ہے ایمان. اسی طریقے سے پورلارزم کے اندر بھی یہ بات مطرح ہوتی ہے، کثرت گرائی. پورلارزم کثرت گرائی، اس کے اندر بھی کیا ہے، یہ تجربہ دینی جو ہے اپنا وجود کا اظہار کرتی ہے وہاں پر. اسی طریقے سے مثلا جب یہ بات ہوتی ہے کہ گوہر دین کیا ہے، گوہر یعنی جو لب ہوتا ہے، مثلا جس کو ہم ہیرا کہتے ہیں، تو کسی بھی حقیقت اور اس کی اصل کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، تعبیر استعمال کرتے ہیں گوہر. اس کا گوہر کیا ہے، اس کا دین کا گوہر کیا ہے، جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو وہاں بھی یہ بات اپنا جلوہ پیدا کرتی ہے. جیسے وہاں پر بعض بزرگان، بعض مفکرین غربی، وہ یہ کہتے ہیں دین کی حقیقت و گوہر و صدف کیا ہے، تجربہ دینی ہے. مثلا مہم ترین جگہ کے جہاں پر یہ بحث مطرح ہوتی ہے، اور ہمارے مسلمان متفکر بھی اس کے اندر گھرے ہوئے ہیں اس بحث کے اندر، وہ مسئلہ وحی ہے. ہم پڑھیں گے اس بحث میں کہ جب ہماری بات آگے چلے گی، مقدمات کی بات طے ہو جائے گی، اس کے بعد ایک بات ہم نے یہ بھی پڑھنی ہے کہ وحی کیا ہے، حقیقت وحی کیا ہے. تو ان مسلمان مفکرین نے یہ کہا آ کر وہی تجربہ دینی ہے، پیغمبر کا تجربہ یہ دینی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسا ہمارے ذہن کے اندر اس وقت تصور ہے کہ وہی کون لے کر آتا ہے، فرشتہ لے کر آتا ہے، خدا بھیجتا ہے. یہ متفکرین اگر کہتے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں ہے، وہی تجربہ دینی ہے، مطلب واضح ہو جائے گا ایسا ایسا. اسی طریقے سے اس بات خدا کے اندر بھی یہ کاربرد رکھتا ہے مبنا. یعنی اگر اس بات خدا کے اندر کیسے، یعنی براہین اس بات خدا میں غربیوں کے اندر ایک جو برہان اقامہ کیا جاتا ہے وہ کیا ہے، تجربہ دینی ہے. اور ایک قسم کا یہ برہان تجربہ دینی کا، یہ ہم عام انسانوں کے اندر بھی موجود ہے. مطلب واضح ہو جائے گا. ابھی فقط میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ بات کہاں کہاں ذکر ہوتی ہے، اس کی اہمیت کہاں کہاں جلوہ گر ہوتی ہے. इसी तरीके से मसला अक्लुद्दीन के अंदर भी ये बात मतलब होती है, और इसके अलावा एक दो और मवारिद हैं। मुहिम तरीन यही थे, यानी सबसे मुहिम जो चीज़ हमारे लिए है और हम इस बात को ज्यादा पढ़ते हैं कलाम जदीद में, उसकी मेन वजह फकत वही का मसला है। और भी बातें हैं हमारे लिए मुहिम है, उनको भी हल करना है, उसका मबना यही तजर्बे दीनी है, लेकिन जो हमोगम है कलाम जदीद के अंदर इस बात को जिक्र करने का और फिर इसको हल करके नकद करने का, उसकी वजह यह है कि वही को तजर्बा दीनी करार दिया जा रहा है। वही की हकीकत के जो इस्लाम और दीन और रिवायात व आइमा ने जिक्र की है, उस वही से दूर किया जाता है इस मबने के जरिए। बस ये मबना इंतहाई अहमियत का हामिल है कलाम जदीद में। ये मबना कलाम जदीद में कैसे वारिद हुआ, यानी गर्बियों में ये मबना क्यों बना, ये नजरिया क्यों सामने आया, इसकी भी एक अपनी अवामिल हैं, उसको अभी अर्ज करता हूँ। सबसे पहले थोड़ा इसका लफजी तज्जिया कर लें कि तजुर्बे दीनी किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको रिलीजियस एक्सपीरियंस कहते हैं, रिलीजियस एक्सपीरियंस। इसको फारसी में जो तर्जमा किया गया रिलीजियस एक्सपीरियंस, इसको तजुर्बे दीनी के साथ तर्जमा किया गया, इसका मुआदिल जो फारसी में किया गया है तजुर्बे दीनी से है। और इसका मुबतखिर कौन करार दिया जाता है, इसका मुबतखिर जो है ये मैंने यहां लिखा है, क्या है, फरेडिक शलायर मिश, फरेडिक शलायर मिश ये मुबतखिर है इस मबने का, इसको तबयीन किया है, इसने बयान किया है, और इसके बाद फिर गर्बी मुफक्किरीन इसके तहते तासीर करार पाए और फिर इसको जाकर तबयीन किया। और ये 1768 ईस्वी में पैदा हुआ है और 1834 में इसकी वफात हुई है, यानी 19वीं सदी का है, 1834 में, यानी आज से कितने साल पहले, तकरीबन 150 साल के करीब बनता है, यानी ये मौजूद था गर्ब में और इसने ये तजर्बे दीनी का नजरिया मतरा किया। लेकिन जब आप इस फ्रेडरिक शलायरमेश को आप फारसी में जाकर पढ़ेंगे तो इसको शलायर माखिर के साथ तर्जमा किया गया है। अब मैंने फारसी जबान असातीद से नहीं पूछा कि इसकी वजह क्या है कि फ्रेडरिक शलायरमेश के जो इंग्लिश में इसका अपना ये इस तरीके से तलफ़ुज़ है उसको तर्जमा शलायर माखिर के साथ क्यों किया गया है, हालांकि शलायर मेश है, शलायर माखिर नहीं है, लेकिन इसकी वजह हतमन कोई ना कोई होगी, क्योंकि तमाम कुतुबे मैंने कलाम जदीद में जो मुहिम तरीन है उसमें देखा है शलायर माखिर ही तर्जमा किया गया। अगर इश्तबा होता तो हतमन कोई ना कोई तज़क्कुर देता हो, लेकिन अभी ये इस तरीके से तर्जमा हुआ। बहरहाल किसी उस्ताद से तो फिर कोई पूछेंगे तो आपको भी अर्ज करूंगा। ये शलायर माखिर या शलायर नाम अगर दुरुस्त तलफ़ुज़ करें शलायर मेश, ये आलमानी है, जर्मनी का मुतफक्किर है, आलम दीन है, वहां का मसीहियत इसका दीन है, फैलसूफ है, इसने ये मबना जिक्र किया है। तजुर्बे दीनी से क्या मुराद, अब यहां पर लंबी चौड़ी तफासील मौजूद हैं, मैं उन तफासील में नहीं जाना चाहता क्योंकि किताब के अंदर वो तफासील जिक्र नहीं हुई हैं, लिहाजा आप दोस्तान को भी जहमत नहीं देता कि तजुर्बा का माना क्या किया गया है, लुगवी माना क्या है, इस्तलाही माना क्या है, फिर इस्तलाही मानों के फिर तफावुत क्यों है, कौन सी तारीफ बेहतर है कौन सी तारीफ बेहतर नहीं है, इसको इंशाल्लाह आप बात किसी बड़ी किताब में या उसमें आप खुद पैगिरी करेंगे। अभी फकत ये बयान करना है कि तजुर्बा दीनी क्या है, तजुर्बा दीनी से क्या मुराद है। तजुर्बा दीनी से मुराद यहां पर तकरीबन ये मुराद लेते हैं कि ऐसा तजर्बा कि जिस तजर्बे को तजर्बा करने वाला दीनी तफसीर करे अपने तजर्बे की, दीनी तलक्की करे उसको, दीनी एतबार से उसको तफसीर करे। तजर्बा यानी तकरीबन आप यूं कहें कि एहसास के माना में है यहां पर। मसलन आप देखें, मैं आपको मिसाल छोटी सी देता हूं, बाद में इंशाल्लाह इसकी मिसालें भी आ जाएंगी। तजुर्बा दीनी गोया कि इस तरीके से है, मैं आपको मिसाल देता हूं, आप यहां मौजूद हैं, आपका खानवादा घर में मौजूद है, क्लास मसलन होती थी 9 से 10 बजे तक, और एक दिन क्या होता है कि क्लास जो है वो 9 से 9:30 बजे तक हुई है, आप जल्दी फारिग हो गए और क्या है घर चले गए अपने। जैसे ही आप घर पहुंचे आपने देखा कि एकदम आग भड़की है वहां पर और आपके बच्चे जो है मसलन वहां पर मौजूद हैं। अब अगर आप 9:30 बजे वहां ना पहुंचते बल्कि अपने टाइम पर क्लास खत्म करके जाते तो आपके घर का क्या हालत होती, चल जाता, क्योंकि आप जिस टाइम वहां पहुंचे आग भड़की है वहां पर, यानी 9:30 बजे। अब आप जब वहां पर जाते हैं, अब आपने जब ये हालत देखी तो आपके अंदर एक एहसास पैदा हुआ, आपके अंदर एक आतिफा पैदा हुआ, क्या आपने एक एहसास किया किस चीज का कि कोई है बाला तर के जिसने मुझे वक्त पर यहां पहुंचाया ताकि इस मुसीबत से मैं अपने घर वालों को बचा सकूं। ये तजुर्बा कहलाता है। अब वो इस तजुर्बे से नतीजा क्या निकालता है कि हतमन मावरा तबीआ, इंसान से बालातर कोई हस्ती है कि जिसने मुझे जल्दी यहां पर पहुंचाया और मेरे बच्चे की जान बचा ली, और यहां से क्या नतीजा लेते हैं कि खुदा है। ठीक है, लिहाजा तजुर्बा दीनी क्या माना हो गया इसका, ऐसा तजुर्बा के तजुर्बा गर उसको क्या करता है, दीनी तलक्की करता है, दीनी तफसीर करता है। हर किस्म का तजुर्बा तजुर्बा दीनी
उसे
नहीं
दीन को
कहलाता
साबित करने की कोशिश करता है।
ना, दीनी ताबीरें इस्तेमाल करता है, जैसे मैंने भी आपको मिसाल दिया। ठीक है, अब इसकी और भी तफसीर हो सकती थी, आप मादी तफसीर भी कर सकते थे, आमिल कोई और जिक्र कर देते, लेकिन आप क्या आमिल जिक्र कर रहे हैं कि ये जो मैं टाइम पर पहुंच गया आग भड़कने से पहले या आग भड़कने के वक्त वहां पर पहुंच गया, इसका मतलब है कि कोई है ऐसी हस्ती के जो मुझसे मावरा है कि जिसने मुझे यहां पर भेजा है और ये जमीना मेरे लिए फराहम किया ताकि मैं अपने खानदान की जिंदगी बचा सकूं। अब आप ये तफसीर कर रहे हैं इसको, तो लिहाजा इसको कहते हैं कि ऐसा तजुर्बा कि जिसको आप इस तरह दीनी तलक्की करें, तजुर्बा तजुर्बा गर वो क्या कहलाता है, तजुर्बा दीनी। यानी ये शख्स के जिसने तजुर्बा किया है ये इस तजुर्बे की तजुर्बे को अवामिले तबीई के साथ तफसीर नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि ये जो तजुर्बा मैंने किया है ये इन अवामिले तबीई के साथ साजगार नहीं है, मुझे काने नहीं करता कि ये अवामिल बने हैं कि मैंने ये तजुर्बा किया है, बल्कि इससे मावरा अवामिल मौजूद हैं कि जिसकी वजह से ये तजुर्बा इत्तेफाक पैदा किया है इसने। बस तजुर्बा दीनी क्या हो गया है कि तजुर्बा गर जिसको दीनी तलक्की करता है उसको दीनी तफसीर करता है और तफसीर तबीई को कबूल नहीं करता।
इस तरह के असात को क्या होने क्या इत्तेफाक ही इत्तेफाक के तौर पे ऐसा हुआ ना होगा।
ये एक और तफसीर अर्ज कर रहा हूं, तजुर्बा दीनी में जब आपको एक तजुर्बा होता है और हम कमोबेश हमारी जिंदगियों में ऐसे होता है, और हम क्या करते हैं उसकी दीनी तफसीर करते हैं, कभी हम इत्तेफाक से उसको तफसीर नहीं करते उसको,
कहते खुदा का नवा जल्दी पहुंच गया ऐसा होता
है, हतमन ये काम करते हैं उसमें। बस तजुर्बा दीनी का तकरीबन मफहूम इस किस्म का निकलता है। बस यूं मैं एक इबारत इसने खूबसूरत बयान की है यहां पर, मैं पढ़ देता हूं फिर तर्जमा करता हूं उसको। कहते हैं दीनदारान ताबीरी दीनी अज तजुर्बे खुद बेदस्त मी दहांद, यानी दीनदार क्या करते हैं कि जो एक दीन के हैं वो तजुर्बे दीनी अज तजुर्बे खुद बेदस्त मी दहांद व तजुर्बे खुद रोबर असास आमूजा है ये दीनी तोसीफ व तफसीर मी कुनन। एक तजुर्बा उनको मिलता है दीनदारों को, और उन उस तजर्बे को क्या करते हैं अपने जो एतकादात दीनिया हैं मबानी दीनिया हैं उसके मुताबिक फिर उस तजर्बे को क्या करते हैं आकर तफसीर करते हैं। यह बन जाएगा क्या तजुर्बा दीनी। और फिर यह भी जरूरी नहीं है कि ये दीनदार जिस तजुर्बे को करने के बाद उसको दीनी तफसीर कर रहा है तो हतमन वो खारिज में इस तरीके से हो भी सही, मुमकिन उसके तवाहुमात हो, उसके गलत हो, मसलन खुराफात का कायल हो, एक अलग बात है। अभी तजुर्बा दीनी में ये बात हो रही है तजुर्बा दीनी की माहियत क्या, तजुर्बा दीनी का मौजू मुहतवा क्या है इसका। उसका मुहतवा यही है कि हर वो तजुर्बा के जिसको तजुर्बा गर क्या करे दीनी ताबीरों के साथ बयान करे तफसीर करे वो तजुर्बा दीनी कहलाएगा। बात वजह हुई है। अब ये एक और मतलब यहां पर इन्होंने जिक्र किया, साहिब किताब ने उसकी तरफ इशारा नहीं किया लेकिन मतलब वाजे होने के लिए कि तजुर्बा दीनी क्या है ये बाज़ नुकात की तरफ तवज्जो जो है वो जरूरी है। पहला नुकता ये ज़हन में रखे तजुर्बा दीनी तजुर्बा मुतआरिफ व आदि से मुतफावित है। तजुर्बा दीनी में क्या है क्यों मुतफावित है, इस वजह से क्योंकि तजुर्बा जैसे अभी मैंने तफसीर की है और बयान किया है उसको, तजुर्बा दीनी का मुतअल्लक मावरा उत तबीआ बनता है। और तजुर्बा है ये मुतआरिफ जो है थोड़ा छोटा छोटे मोटे जो आप तजुर्बे आपकी जिंदगी में इत्तेफाक होते हैं ये तजुर्बे तजुर्बा दीनी नहीं कहलाएंगे क्योंकि इनका मुतअल्लक मावरा उत तबीआ नहीं होता। तजुर्बा दीनी क्या कहलाएगा, यानी ऐसा तजुर्बा आपको हो कि जिससे एहसास खुदा जो पैदा करे आकर, मसलन इंसान खुदा को तफसीर करता है फिर आगे तजुर्बा तजल्ली खुदा तजल्ली मसीही, मतलब आप मसीहियत को अगर ले लें तजल्ली मसीह का एहसास हो उसको। बस नतीजा पे एक फर्क जो है यहां पर बयान करने से ये मतलब वाजे हो जाता है कि हर तजुर्बे को हम तजुर्बा दीनी नहीं कहेंगे बल्कि तजुर्बा दीनी वो तजुर्बा कहलाता है कि जो मावरा उत्तबिया या एहसास मुताली जिसके अंदर मौजूद हो वो तजुर्बा दीनी कहलाएगा। हर किस्म के एहसास को तजुर्बा दीनी नहीं कह सकते बल्कि एहसास मुताली मौजूद हो। और फिर एक और मतलब यहां पर जिक्र किया है कि तजुर्बा दीनी खारिकुल आदा आमाल से फर्क करता है, यानी ऐसा नहीं है कि हर इंसान जो खारिकुल आदा फेल अंजाम देता है वो हतमन क्या है आप उसको तजुर्बा दीनी से तफसीर करें आकर। मसलन एक जादूगर आके एक जादू करता है आपके सामने आकर आप उसके जरिए एक एहसास मुताली पैदा कर लेते हैं, मसलन कहेंगे ये तजुर्बा दीनी है, नहीं उसको तजुर्बा दीनी नहीं कहेंगे, तजुर्बा दीनी खारिकुल आदा से जुदा है। क्यों, उसकी वजह यह है कि तजुर्बा दीनी के अंदर जो चीज मुहिम है वो वसूल बे खुदा है। तजुर्बा दीनी में इंसान क्या करना चाहता है, खुदा तक पहुंचना चाहता है, यानी तजुर्बा दीनी में जो एहसास मुताली पैदा होता है इस एहसास से वो खुदा तक पहुंचता है। लेकिन सहर और तस्खीर जिन वगैरह में इस किस्म की कोई शर्त मौजूद नहीं है। और तजुर्बा दीनी कस्बी नहीं है बल्कि वहबी है, यानी खुद ब खुद आता है। यानी ये जो एहसास आपके अंदर पैदा होता है और वो एहसास आपको खुदा तक लेकर जाता है, ये एहसास कस्ब करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप ऐसे जमीने फराहम करें अपने लिए कि फिर आपको वो एहसास हो ताकि आप खुदा तक पहुंचे ना, बल्कि एकदम आपके अंदर एक ऐसी हालत तारी होती है, एक ऐसा एहसास होता है और आपके आतफे भड़क उठते हैं कि जिसके जरिए आप खुदा की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। ये वहबी है, खुद ब खुद आता है, कस्ब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन खारिकुल आदा काम जो सिहर वगैरह है, इसको क्या करना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है, कसब करना पड़ता है। मसलन आपको मिसाल देते हैं, आपने बुशरे हाफी की मिसाल तो सुनी होगी, इमाम काजिम अलैहिस्सलाम का वाकया मेरा ख्याल में इमाम काजिम अलैहिस्सलाम का है कि इमाम काजिम अलैहिस्सलाम बुशरे हाफी के घर के पास से गुजरे, मौसीकी की आवाज आ रही थी। मौसीकी की जब आवाज आई तो इमाम एक उसकी खादिमा जब बाहर कोई काम के सिलसिले में निकली हुई थी, इमाम ने सवाल किया कि ये किसका घर है, तो उसने कहा कि ये मसलन आजाद का हुर का घर है, या पता नहीं कोई इसका नाम लिया। तो इमाम ने कहा कि आजाद है इसलिए ये काम कर रहा है, अगर अब्द होता तो ये काम ना करता। यही बात जब उसकी खादिमा ने जाके बुशरे हाफी को जाकर बयान की, तो उसका ये जुमला सुनना उसके अंदर तहवुल ईजाद कर देता है, उसके अंदर एक ऐसा एहसास और एक ऐसा आतिफा भड़काता है कि फौरन वो क्या करता है, अपनी उस गलती की तो मुतवज्जे होता है, भाग के आता है, तोबा करता है आकर। अब ये क्या है, ये एक ऐसा एहसास है जो पैदा हुआ है उसके अंदर, ना ये कि उसने उसको कस्ब किया है जाकर। ये तजुर्बा दीनी है, पता जो ये बस ये तजुर्बा दीनी को वाजह करने के लिए इन चंद चीजों को अर्ज किया, अगरचे ये किताब से बाहर था। बस यहां तक आप लोगों के लिए वाजे हो जाना चाहिए कि माहियत व मुहतवाए तजुर्बा दीनी है। जब कहा जाता है तजुर्बा दीनी तो उससे क्या मुराद है, खुलासा एक कलमे में उसका यह है, तजुर्बा दीनी यानी एहसास मुताली। किताब के अंदर यह तारीफ मौजूद है, मसलन सफा 253 के अंदर यूं आकर बयान करते हैं, कहते हैं तारीफ सादे व राएज आन एहसासे वाबस्तगी बे मौजूदी मौजूदी मुतआली अस्त। यानी एक मौजूद मुतआली के साथ एहसासे वाबस्तगी, एहसासे वाबस्तगी पैदा हो जाना, ये तजुर्बा दीनी कहलाता है। ठीक है, यानी आपके अंदर एक ऐसा एहसास पैदा हुआ कि उस एहसास ने आपको कहां पहुंचा दिया, वजूद मुतआली की तरफ। इस किस्म के एहसास को तजुर्बा दीनी कहा जाता है। मतलब हुई है कुछ सवाल अगर हो तो बयान करें।
यूं कह सकते हैं कि ऐसा एहसास जो दानी को आली तक ले जाए,
ऐसे जो भी आप ताबीर कर लें, लेकिन उसके अंदर आप जहन में ये रखें कि आपने मावराउत तबिया की तरफ जाना है, वजूद मुतआली की तरफ जाना है। मादी चीजों के साथ आपका तजर्बा अगर मुतअल्लिक हुआ या तफसीर ऐसी हुई तो तजर्बा दीनी नहीं कहलाएगी, हतमन मौजूद मुतआली की। लेकिन अब इसको आप कोई भी ताबीर दे दें, दानी का एहसास करना आली की तरफ या जिस तरह भी, वो मुहिम नहीं है, ताबीर जो भी ले लें। बस ये था इसका थोड़ा तजर्बा दीनी की मुहतवा अर्ज करना चाहता था कि मतलब वाजे हो जाए, उम्मीद है कि मतलब वाजे हो चुका होगा। इसके बाद जो बात मतरा होती है वो ये कि शलायर मा खैरिया, शलायर मैश, इसने नजरिया क्यों दिया, क्या वजह बनी कि उसने आकर इस नजरिए को इख्तियार किया। इस मतलब को बयान करने से पहले मैं एक नुक्ता और अर्थ कर लूं, वो भी इसी इसी यानी मौके के अंदर जिक्र होना चाहिए उसको, वो ये कि तजुर्बाए दीनी की ताबीर खुद शलायर माखिर ने या शलायर मैश ने इस्तेमाल नहीं की, बल्कि इसके बाद जो इसके मुतासरीन में से है, इसके नजरिए में और मुहिम तरीन किताब उसने लिखी है विलियम जेम्स, कि ये 1842 में पैदा हुआ और 1910 में फोत हुआ है, विलियम जेम्स, इसने आकर तजुर्बाए दीनी के ऊपर एक किताब लिखी है और वहां पर इसने तजुर्बाए दीनी की ताबीर को इस्तेमाल किया और यहां से फिर क्या है ये ताबीर मारूफ हुई है। वायला शलायर मेश ने या शलायर माखिर ने क्या किया है, अपनी एक और ताबीर को इस्तेमाल किया, हम असर नहीं था, यानी ये शलायर मैश जो है 1834 में फोत हुआ है और ये 1842 में पैदा हुआ है, यानी तकरीबन 10 साल या 8 साल बाद उसके पैदा हुआ है और फिर उसके मुतासरीन में से है, यानी उसके मकतब से मुतासिर हुआ है, उसकी फिक्र से मुतासिर हुआ है, फिर उसको तबयीन किया है, उसकी तफसीर की है और इस मबने को फैलाया है इल्मी हलकों के अंदर, और फिर इसने किताब लिखी है कि जिसका फारसी तर्जमा क्या है, अनवा ए तजुर्बा दीनी द वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, किताब का ये नाम है अनवा ए तजुर्बा दीनी या तनव ए तजुर्बा दीनी का नाम भी मौजूद है उसके अंदर, इसमें आकर इसने तजुर्बा दीनी की ताबीर को इस्तेमाल किया है और फिर यहां से वारिद हुआ है कलाम जदीद की और तमाम फलसफा गर्ब के अंदर और ये मारूफ हुई इस ताबीर को। बस अब अगली बात की तरफ आते हैं कि ये तजुर्बा दीनी का मबना इख्तियार क्यों किया गया। शलायर माखिर ये ऐसी कर्न में जिंदगी गुजार रहा था कि जिस कर्न में चंद खसूसियात मौजूद थी कि जिसकी वजह से ये बहस मतरा हुई है वहां पर, मसलन 16वीं या 17वीं सदी के अंदर बाज मुफक्किरीन गर्बी पैदा हुए और उन्होंने आकर इलाहियात तबीई यानी इलाहियात अकली, इलाहियात अकली यानी क्या, यानी खुदा को इलाहियात की बहसों को बराहीन अकलिया के जरिए साबित करना, इसको कलाम जदीद में इलाहियात तबीई से याद करते हैं और फलसफे की ताबीर में इसको क्या कहेंगे, इलाहियात अकली। ये तवज्जो रखें इसकी तरफ, अगर आप कलाम जदीद में कहीं इलाहियात तबीई की ताबीर देखें तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलाहियात के जो अवामिल तबीई के जरिए बयान हो, मादियात के जरिए बयान हो, ना वो मुराद नहीं है, तबीई यानी अकली अकलानी। यहां ये तबीयात अकली जो मौजूद थी और बराहीन अकलिया मौजूद थे, दो मुफक्किर ऐसे आए कि जिन्होंने इनके ऊपर नकद किया ऐसा कि फिर गर्बी उन नकदों का जवाब नहीं दे सके। उनमें सबसे पहले डेविड ह्यूम मुहिम है। डेविड ह्यूम ने आकर तमाम बराहीन अकलिया को आकर रद्द किया और आकर यह कहा कि आप लोग जितने भी बराहीन इकामा कर रहे हैं इस बात खुदा को, वो बराहीन ताम नहीं है। जैसा कि हमने बराहीन खुदा में बाद उसके इश्कालात को पढ़ा, बुरहान नज्म को आकर रद्द किया उसने, बुरहान इल्लियत को आकर रद्द किया उसने, असास यही था उस वक्त के जमाने में, बुरहान नज्म मुहिम तरीन बुरहान था मुवाहिदीन के लिए, चाहे वो मसीही हो या मुस्लिम, मुवाहिद के लिए बुरहान नज्म, उसने बुरहान नज्म को आकर खराब किया। इल्लियत का मबना ऐसा मबना है कि जिसके जरिए बहुत सारे बराहीन इकामा होते हैं, उसने मबना इल्लियत को आकर बातिल किया और इससे तहते तासीर करार पाकर, अब डेविड ह्यूम तो मुलहित तकरीबन बन गया शायद, जहां तक मेरे जेहन के अंदर है, जब तमाम बराहीन को खत्म कर लिया। इसके बाद जब कांट आया तो उसको भी इसके बराहीन के ऊपर नकद वारिद नजर आए, और उसने खुद भी क्या किया, तमाम बराहीन अकलिया को कि जो इस बातें खुदा के लिए बयान किए जाते थे उन सबको रद्द किया। लेकिन खुद इसने क्या किया, कांट ने आकर अखलाक के जरिए खुदा को साबित किया। इसने ये आकर बयान किया अपनी तहकीक के अंदर कि हम अकल के जरिए तो खुदा को बयान नहीं कर सकते, इस बात नहीं कर सकते, लेकिन अखलाक व अकल अमली के जरिए खुदा को हम साबित कर सकते हैं। उसने बराहीन अखलाकी को तबीयन किया और उसके जरिए खुदा को साबित किया, और बराहीन के अंदर इशारा हुआ उसके ऊपर, मेरे ख्याल में किताब के आखिर में जाकर इसके तरफ, इस मबने की तरफ इशारा आएगा, बराहीन अखलाकी कैसे खुदा का इस बात होता है उसमें। शलायर माखर इनके बाद में है, बस शलायर माखर जब आया, और या शलायर मेश जो है, इसने आकर देखा, खुद मुतदयन था, दीन पर बाकी रहना चाहता था, किताब मुकद्दस का कायल था। अब जब एक तरफ से तो वो देख रहा था क्या कि ये बराहीन जितने भी हम खुदा के इस बात के लिए बयान करते थे ये तो हो गए खत्म, लेकिन अब हमने दीनदार तो हैं और दीन हमारे लिए मुहिम भी है, दीनदार भी रहना है, फिर क्या करें इसके ऊपर, कुछ चाराकार चाहिए था। जब ये बराहीन इसके जरिए खुदा के इस बात पर जो नकद हो गए, तो एक मकतब जरूर में आया जिसको कहते हैं मकतबे रोमांटिक। मकतब रोमांटिक ने आकर जहूर किया, ये रोमांटिक, मकतब रोमांटिक क्या कहता है आके, ये यानी कहता है दीन व हर चीज को एहसास अवातिफ इनके ऊपर जो है आकर इसको तबीन करता था आकर, यानी असल व असास क्या है, अवातिफ व एहसासात। इस मकतब का गोहर यही था, और आकल को आकर नकद करते थे आकर। बस अब आप देखें आकर दो नुकते ये अर्ज हो गए, बस दिक्कत करनी है, अर्ज कर रहा हूं अवामिल तब समझ में आएंगे तजुर्बा दीनी कैसे वजूद में आया है। बस पहला नुकता क्या हुआ, इलाहियात तबीई के तमाम बराहीन नकद हो गए। जब ये हमारे पास उस वक्त के मुवाहिदीन के पास जब बराहीन अकलिया मौजूद थे खुदा को साबित करने के लिए, और ये रास्ता उनसे ले लिया गया, ये वसीला खुदा तक पहुंचने का उनसे ले लिया गया, तो मैदान खाली हो गया। मैदान को अब कौन सा मकतब पूर करे आकर, मकतब रोमांटिक पैदा हुआ, यानी हर चीज को एहसासात व अवातिफ के जरिए तफसीर करने लगा। दीन की तफसीर कौन सी थी, एहसासाती व अवातिफी, मकतब रोमांटिक के नाम से ये पैदा हुआ। और तीसरी जो मुहिम चीज उस दौर के अंदर मौजूद थी वो ये अकीदा था कि हर वो चीज के जो तजुर्बे के कैद में आ जाए वो तो साबित हो सकती है, उसको हम मान भी लेंगे, लेकिन हर वो चीज जो तजुर्बे के दायरा से खारिज हो हम उसको कबूल नहीं करेंगे। बात वाजे हुई है, ये जब आप अपने जहन के अंदर रखें, शलायर माखेर या शलायर मेश जो है वो इस फजा के अंदर जिंदगी गुजार रहा था। बस उसने आकर देखा बराहीन अकली तो ताम नहीं है, मजहब रोमांटिक भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हर चीज को आप इस तरीके से अवातिफ से भी तफसीर नहीं कर सकते, और तीसरा मजहब तजुर्बी भी दुरुस्त नहीं है, ताकि आप ये कहेंगे हर वो चीज जो तजर्बा हिस्सी के अंदर आ जाए वो तो काबिल कबूल है, जो इससे बालातर हो उस वो काबिल कबूल नहीं है। दीन एतकादात कितने हैं दीन के जो तजर्बा हिस्सी के दायरे में शामिल नहीं आवा सकते। इसने आकर नतीजा लिया कि तजर्बे को वसअत दे दी, इसने कहा किसने कहा तजर्बा जो है वो महदूद है, इसके अंदर मादी चीजों के अंदर महदूद है ना, तजर्बा वसी है। तजर्बे की दो किस्में हैं, तजुर्बा एक हिस्सी व मादी है और एक तजुर्बा क्या है दीनी है। बस वो तजर्बी गिरोहों को भी अपने अंदर जल्ब करने के लिए, ताकि वो तजर्बे वाले दीन से दूर ना हो जाएं, तजर्बे के अंदर आकर दस्तकारी की उसने आकर। जब तजर्बे का लफ्ज इस्तेमाल किया, बस जो मकतबे तजर्बी रखने वाला होगा वो कभी दीन से मुतनफिर फिर नहीं होगा, खींच कर आएगा आकर। मसलन आप देखें, ये एक तरीकाकार है लोगों को अपने अंदर जल्ब करने के लिए। मसलन आप देखें, जितने भी इनहराफी गिरोह भी पैदा होते हैं, वो ऐसी ताबीरों के साथ अवाम के अंदर इंटर होते हैं कि वो ताबीरें लोगों के लिए बहुत जालिब वजीबा होती हैं। मसलन पाकिस्तान की मिसाल ले लें, अवाम को गुमराह किसके जरिए किया जा रहा है? विलायत अली के जरिए। यानी हर खुराफात को टच देते हैं किसके साथ? विलायत के साथ। अब जब वो हर चीज पर विलायत का नाम देखते हैं और विलायत को मानते भी हैं, फिर क्या कहते हैं, खींच के चले जाते हैं। अच्छा, ये भी मतलब है, ठीक है, ये भी कोई मान लेता है मतलब। बहरहाल, ये उसने क्या किया, तजुर्बे को वसअत दी आकर। एक मतलब ये देखें, और इधर से बराही ने अकलिया तो ताम नहीं थे, कांट ने आकर अखलाक के जरिए खुदा को साबित किया, और मजहब रोमांटिक पैदा हुआ उसने एहसासात व अवातिफ के जरिए आकर क्या है, अपने दीन को जो है वो तफसीर करना शुरू कर दिया। तो इसने वो वाला जुज भी शामिल किया और तजुर्बे दीनी को मतरा किया आकर। यानी तजुर्बा, यानी क्या मुरा तजुर्बा दीनी? तजुर्बा दीनी के जिसके अंदर एहसास बेवजूद मुतआली मौजूद हो। यानी इसने बैन बैन रास्ता निकाला तजुर्बे के अंदर, के जो तजुर्बे गिरा कायल थे और जो आकर क्या करते थे, मजहबे अकली को आकर बातिल करके उसके रोमांटिक की तरफ गिराश पैदा कर गए थे, तमायुल पैदा कर गए थे आकर। इसने उसको जम करने की कोशिश की और एक नजरिया तजुर्बे दीनी के नाम से निकाला, ताकि ये गिरोह भी दीन से दूर ना हो और ये वाला गिरोह भी दीन से दूर ना हो, बल्कि जम हो जाए। और इसने इस तजुर्बे दीनी का मजहब आकर मथरा किया। बस चंद किताब के मुताबिक चंद मतालिब अर्ज कर देता हूं, फिर इस बात को जम करते हैं। किताब में अवामिल मुअस्सिर पर रुई कर दे तजुर्बी बे दीन के, दीन के तरफ तजुर्बी तजुर्बे दीनी का जो मसाला पेश हुआ, क्या क्या अवामिल थे। पहला उनसुर जो यहां पर इन्होंने जिक्र किया वो ये, जो कि अभी मुफसल मैंने अर्ज कर दिया, ज़ाफ़ निज़ाम है। ये फलसफी, यानी जो बुरहाने अकली बयान किए गए थे, फलसफी बराहीन एकामा किए गए थे, और अकायदे दीनिया का दिफाए अकलानी जो किया जाता था, वो तमाम बराहीन क्या हो गए, नकद हो गए, ज़ईफ़ करार दे दिए गए। जब ज़ाफ़ उसके अंदर नजर आया तो पीछे कुछ चीज बचती नहीं है। एक मतलब ये हुआ। उसमें कौन था? डेविड ह्यूम सबसे पहले था। ये 1711 में पैदा हुआ है, और यानी 18वीं सदी में, मैंने शुरू में 16वीं सदी का नाम लिया था ना, 18वीं सदी से ये अकल गिरा यानी बराहिन अकलिया जो है वो नकद होना शुरू हुए। 1711 में पैदा हुए और 1776 में ये फोत हो गया। इसके बाद कौन आया? एमएल कांट आया। ये तकरीबन 1724 में पैदा हुआ है और 1804 के अंदर फोत हुआ है। ये दो बहुत मुहिम हैं गर्ब के अंदर। यानी अगर आप पाकिस्तान के दानिशगाहों और यूनिवर्सिटीज के तुल्लाब के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो चंद मुफक्किरीन गर्बी के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि तमाम गर्बी निसाब के अंदर कमोबीश इनके मबानी मौजूद है। उनमें से एक डेविड ह्यूम है, एक उनमें से हम यही एक कांट है, एक उनमें से डिकार्ट है, और एक
इसका
दो
पूरा नाम क्या है कार्ड का?
एमा, अब इन्होंने इंग्लिश में यहां पे नहीं जिक्र किया, लेकिन जो फारसी में इन्होंने लिखा हुआ है वो एनमोएल कांट, एनमोएल कांट। बहरहाल, आप कांट लिखें गूगल के अंदर तो वो इंग्लिश में आपको उसका नाम भी बयान कर देगा। बहरहाल, अब किया कि ये इंतहाई मुहिम है, आप अगर दिलचस्पी रखते हैं कि उस तबके के लिए काम करें, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी कि इनके अफकार पर मुसल्लत हों जाकर, फिर नकद करें इनके ऊपर। और फिर जब आप यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर को मिलें और तुल्लाब को मिलें जाकर वहां पर, तो उनके सवालात के आप तब जवाब दे पाएंगे कि जब इनके अफकार पर मुसल्लत होने के बाद नकद किया होगा, फिर जाकर आप उनकी सही तरबियत कर सकेंगे। बहरहाल इस उनवान को मैंने अच्छे तरीके से खोल दिया है। दूसरा उनवान जो यहां पर जिक्र किया वो ये कि नकद किताब मुकदस, यानी यही गिरोह या कोई और गिरोह उस जमाने में जो मौजूद था वो क्या करता, किताब मुकदस को भी आगे नकद करता था। वो कहता बाबा ये जो तसलीस के तुम कायल हो, किस तरह तुम आगे तसलीस के कायल हो रहे हो, आखले साजगार नहीं है ये तीन खुदाओं का मसला। ये जो तजस्सुद खुदा के कायल हो किस दलील के साथ है, वो आकर क्या करते थे, इनको नकल करते थे मतन को आकर। तो जब किताबे खुदा या उनके नजदीक जो किताब मुकद्दस है वो नकद हो रही हो तो फिर क्या है, हतमन कोई चाराजुई होनी चाहिए। मतलब कोई इंसान आकर कुरान के ऊपर ऐसे नकद बयान करे आकर के जो दकीक नजर आ रहे हो जाहिरन, उलमा आराम से थोड़े बैठेंगे, वो अपने इस किताब मुकद्दस का दिफा करने की कोशिश करेंगे।
कुरान पर भी इश्काल है
जी,
किसी ने किए
हैं मौजूद है सुनियों के अंदर, एक अलग बात है उसमें होगा, सुनियों के अंदर खुसूसन ज्यादा हैं और हमारे तशयों के अंदर भी हैं, ईरान के मुफक्किरीन सुरूश है, शबस्तरी है, इस किस्म के इन्होंने बाज इश्कालात इस माना में नहीं कि कुरान को कबूल नहीं करते, लेकिन तफसीर उन्होंने ऐसे किया कि मुनकरे वही और कुरान में से इस तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि अरबियों से मुतासर हैं, उनके मबानी के जरिए आकर दीन को तफसीर करना तो लिहाजा ये मुश्किल पेश आई है। ये भी कलाम जदीद के मौजूआत में शामिल है, लेकिन चूंकि ये इब्तदाई किताब है वो तमाम बातें नहीं आ सकती, और मुहिम इश्काल हैं, यानी अगर काम ना किया जाए उन इश्कालात के ऊपर तो आप आराम से उसके अंदर जवाब नहीं दे सकते उनको। बस जब ये नकद किताब मुकद्दस को किया गया तो आप हतमन चाराजुई होनी चाहिए। शलायर मेश ने आकर या शलायर माखेर, दोनों ताबीर इस्तेमाल कर दो ताकि वाजे हो के फारसी में पढ़ने वाला आप शलायर मेश को देखकर मतलब ये ना समझे शलायर माखेर पता नहीं क्या चीज है, या फिर इस तरीके से इसने आकर फिर क्या किया, इसने आकर तजुर्बा दीनी का मबना जो है वो साबित किया आकर, और ये कहा, ये नुक्ता मैं यहां पर तबीन कर रहा हूं, पहले तबीन नहीं किया, इसने क्या कहा कि इतेकादात दीनिया और चीज हैं और तजुर्बा दीनी और चीज है, दिक्कत करनी है। गोहरे दीन असासे दीन व असले दीन तजुर्बा दीनी है, यानी वो एहसास के जो इंसान के अंदर पैदा होता है और वो इंसान को क्या करता है, मौजूद मुताली के साथ वाबस्ता करता है, उस तक पहुंचाता है, ये एहसास गोहरे दीन है, यही दीन है। और ये जो एतकादात दीनिया व अमाल दीनिया आते हैं, ये अमाल दीनिया उस तजुर्बे दीनी की तफसीर है। बस अगर इतकादात दीनिया के अंदर मुश्किल नजर आती है और आप लोग आकर उसको नकद करते हो तो आपका ये नकद करना असल दीन को जरर नहीं पहुंचाता। क्यों? क्योंकि असल दीन तो तजुर्बा दीनी है और ये इतकादात दीनिया कौन है, तफसीर उस तजुर्बा दीनी है। बस अगर तफसीर पर नकद हो जाए तो असल के ऊपर नकद शुमार नहीं होता। हां आपके बयान में मुश्किल है, उस तजर्बे दीनी को तफसीर करने में तफसीर करने वालों ने मुश्किल, उनके बयान नाकिस थे, उनकी दलीलें नाकिस थी तफसीर की मसलन, लेकिन खुदे वो एहसास जो है वो बातिल नहीं हो सकता। बहरहाल ये एक जमीना था, नकद किताब मुकद्दस चूंकि हो रही थी इसको बचाना था, उसने तजर्बे दीनी के साथ आकर इस तरीके से दिफा किया दीन का। इसी तरीके से मसलन मवाजह बा अदियान दीगर, बस दीन जो है वो दूसरे अधियान से भी जो है वो मवाजे होना शुरू हुए थे, और ये एक दो बात इसके अंदर रह गई है, मेरे ख्याल में टाइम काफी हो गया, चंद नुकात रह गए इसको बाद में बयान करने के बाद इंशाल्लाह बाद वाली बात में वारिद हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।